Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tatsat. Tau Tattvam Najanami Kidrishosi Maheshwara Yadrishosi Mahadeva Tadrishaya Namo Nama. Mundak Upanishad, जिसका संबंध अथर्ववेद से है, इसकी श्रुतियों को आधार मानकर ऋषियों द्वारा अनुभूत मार्ग पर चलने के साधन, लक्ष्य की पहचान और लक्ष्य पर पहुंचने के बाद ये बात सुनिश्चित कर लेना कि सचमुच हम उसी लक्ष्य पर पहुंच गए हैं या नहीं, जिसका वर्णन ऋषियों ने किया। एक ही तत्व होने के कारण जहां कहीं भी पहुंचेंगे एहसास वैसा ही होगा कि हम असली जगह पर पहुंच गए, क्योंकि नकली जगह तो तब हो कि उसके अतिरिक्त कुछ और हो, तो जब है ही वही जिसके लिए ये कहा जाता है कि जहां आप बैठे हो, जिस घड़ी बैठे हो और जिस अवस्था में बैठे हो, वो वहां ही है। तो यहां इस घड़ी, इस समय, इस अवस्था में भी जैसी भी, जिसको भी, जो भी अनुभूति हो रही हो, झलक उसी की ही है, क्योंकि दूसरा कोई तत्व तो है नहीं। और यहां से चलकर हम हजारों सैकड़ों मील दूर चले जाएं, वहां बैठकर किसी विशेष स्थान पर, झील के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, पर्वत की शिखा पर, वहां बैठकर जो अनुभूति होगी, अनुभूति वो भी उसी की ही है, क्योंकि तत्व रूप से जो यहां है वो वहां पर भी। इसलिए ये कह पाना कि उसकी वास्तविक झलक हमें यहां मिल गई या उसको मिली जो यहां से इतनी दूर मेहनत करके गया, परिश्रम करके गया, फिर अनुभूति हो, तो दोनों में सही अनुभूति किसके, इसके लिए तो शास्त्र का निर्णय ही मान्य होगा। ये मनमानी बात से नहीं होगा। कहने को तो हर व्यक्ति कहता है कि जहां हो वही ठीक है, जो मिल रहा है वही। भक्ति वाला भी यही कहता है, ज्ञान वाला भी यही कहता है, कर्म मार्ग वाला भी यही कहता है। भक्ति में साकार भक्ति वाला, निराकार भक्ति वाला, निर्गुण निराकार भक्ति वाला, हरि नाम से नौ तरह की भक्ति, नवधा तो शास्त्रों में ही बतला दी गई। फिर गुणों के आधार पर रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, मानसिक, वाचिक, शारीरिक भक्ति की अनेक विधाएं। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, कई सारे। और हर एक अपनी जगह पर यह कहेगा कि हम ठीक हैं, क्योंकि हर एक के कोई ना कोई आचार्य हैं और हर एक के बहुत सारे अनुयायी। अगर भीड़ को देखकर निर्णय करोगे, मेजॉरिटी को देखकर निर्णय करोगे कि ठीक कौन सा है, तो फिर तो कव्वालियां, कविताएं, इस तरह के कामों में भीड़ बहुत अधिक होती। वेदांत चिंतन में गिने चुने मनुष्यानाम सहस्रेशु, हजारों में से कोई एक इधर को चलेगा, और हजारों जहां जा रहे हैं उनको गलत कहने का कोई अधिकार किसी दूसरे का है नहीं, क्योंकि तत्ववेत्ता ये जानता है कि जो कोई जहां भी जा रहा है जा उसी की ओर ही रहा। जो सीप को देखकर दौड़ रहा है उधर को, असल में तलाश उसे भी चांदी की ही है, सीप समझ के नहीं जा रहा, ढूंढ वो भी चांदी को ही रहा है, और चांदी समझ कर ही वो वहां गया था। ये बात दूसरी है कि उसको वहां पर चांदी नहीं मिली, लेकिन उसे जो कुछ भी मिला वो झलक उसी की ही थी। अगर ये बात वो भी जान लेता है जाने वाला, तो फिर चांदी में और सीप में कोई फर्क नहीं। अगर उधर को जाने वाले को चांदी नहीं मिली, जो भी मिला सीप में मिला, और वो इस बात को जानता है कि ये सीप की सत्ता भी उसी की सत्ता से ही है, नहीं तो सीप नाम की भी कोई चीज नहीं। इसीलिए तो स्वामी राम कहते हैं ना, यहां यूं भी वाह वाह है और यहां वो भी वाह वाह, चांदी हो या सीप हो क्या फर्क पड़ेगा, जिसने पहुंचना है कहीं ये बात उसकी, जिसने शब्दों में ही रहना है, जिसके लिए चांदी और सीप में अंतर है, जिसके लिए सांप और रस्सी में अंतर, वो अभी इस मार्ग पर चला ही नहीं, उसके मन में अभी उसकी सर्वव्यापकता, उसकी नित्यता, उसकी विभुता के अर्थ जीवन में घटत ही नहीं हुए। उसने केवल अब सुना हुआ ही है कि सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वथा। जब ये बात बैठ गई, चरितार्थ हो गई जीवन में, तो फिर सीप और चांदी, मृग मरीचिका की जल और रेत की चमक, इनमें कोई अंतर नहीं रहता। असली बात तो वहां पहुंचने की ही है साधकों के लिए, और विशेषकर हम जो अब उम्र के इस हिस्से में पहुंचे हुए हैं, अगर ईमानदारी से वासनाओं का परित्याग कर उस तत्व की ओर अपने तन मन और वृत्तियों को नहीं लगाते, तो फिर ये उपनिषदों का सुनना सुनाना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। उपनिषद का कोई भी, देखो कि नाम भी पढ़े पूरा उपनिषद, भद्रम करणे विश्रुणुयाम देव, काफी है इतना, उम्र भर के चिंतन के लिए नहीं। अगर ये ही जीवन में चरितार्थ हो जाए तो वहां पहुंच गए जहां पहुंचना था। आगे इसमें मुंडक के कितने मुंडक हैं, एक मुंडक में कितने अध्याय हैं, इसकी कितनी श्रुतियां हैं, इसमें इतने मंत्र हैं, कौन सा छंद है, ये तो यूनिवर्सिटी में किसी ने कोई परीक्षा देनी हो, कोई डिग्री लेनी हो, तो उन लोगों के लिए। हम अगर अपने कानों को, जैसे यही बात के भद्रम श्रुणिया, और ये बात इसमें उस दिन भी ये बात स्पष्ट की थी कि जब हम कहते हैं हमारे कान शुभ सुने, अर्थात प्रसन्नता और कल्याणकारी शब्दों को सुने, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम ऐसा बोलें क्योंकि कोई बोलेंगे ही तो दूसरा सुनेगा ना। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम बोलें कुछ और सुने ये। जो व्यक्ति स्वयं कल्याणकारी शब्द और प्रसन्नतादायक शब्दों का स्वयं उच्चारण नहीं कर सकता, वो कभी सुन ही नहीं सकता। तो व्यर्थ के चिंतन को, व्यर्थ की बातों को छोड़कर हर समय ये लक्ष्य बना रहे कि ऐसे शब्द हमारी जुबान पर आए। शब्द तब जुबान पर आएंगे अगर वो चिंतन में, क्योंकि शब्द एकदम जुबान पर नहीं आते। गीता में बहुत ढंग से उन्होंने समझा दिया आपको कि ध्यायात विषयानुपुंसा संगस्तेषु उपजायते। विषयों का चिंतन करोगे तो वही शब्द जुबान पर आए। सत का चिंतन करेंगे तो सत वही शब्द जुबान पर आए। अगर हमारा चिंतन शुभ है, और केवल शुभ ही नहीं साथ में प्रसन्नता को देने वाला, दोनों ही चीजें, चिंतन शुभ भी हो सकता है लेकिन वो उदासीनता की ओर भी ले जा सकता है। वेदांत के ऋषियों को श्री शंकराचार्य जी के आप स्तोत्रों को पढ़ो, जितनी मस्ती उनमें आपको नजर आएगी, किसी दुनिया के बड़े से बड़े आप समझ लो रसिक को भी वो मस्ती नसीब नहीं होगी। आम तौर पर लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं, सुना है, वो कहते हैं जी भगवान शंकर की आराधना करो, तो वो ज्ञान के प्रतीक, विश्वास के प्रतीक, ज्ञान मार्ग के प्रतिपादक, और भगवान कृष्ण जो हैं वो प्रेम मार्ग के प्रतिपादक। असल में जिनको रस शास्त्र का पता नहीं या जिनको ज्ञान शब्द के सही अर्थ नहीं आते, ये भ्रांति उन्हीं के मन में है। हमारे पूरे साहित्य में प्रेम लक्षणा भक्ति के अगर आचार्य हैं तो भगवान शंकर, रामचरितमानस में बैठे हुए जहां सभी देवता विचार कर रहे हैं कि नारायण कहां मिलेंगे, बैठे ही सुर सब कर ही विचारा कहां पाइए प्रभु करुणाकार। कोई कह रहा है वैकुंठ में चलो, कोई कह रहा है समुद्र में चलो, कोई कह रहा है वहां चलो। तो शंकर ये कह रहे हैं पार्वती से कि उस सभा में मैं भी बैठा हुआ था और अवसर पाई वचन एक कहे, जब मुझे मौका मिला कि कहां है तो मैंने एक बात कही। शंकर क्या बात कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही हम जात। ये सूत्रपात है प्रेम लक्षणा भक्ति का और ज्ञान की व्यवहार में परिणति का। ज्ञान जब व्यवहार से झल अभिव्यक्त होता है तो प्रेम के रूप में, ज्ञान कभी भी नफरत के रूप में जीवन से प्रकट नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान को कहते ही प्रकाश। ज्ञान अंधकार नहीं है, घृणा नहीं है, नफरत नहीं। तो शंकर ही सचमुच में ज्ञान जीवन में कैसे झलकेगा इस बात की सूचना देते। प्रेम लक्षणा भक्ति के भी वही एकमात्र आचार्य। कृष्ण भक्ति में, कृष्ण लीला में, रास लीला में, क्योंकि उसके रहस्य को समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं, तो वो भक्ति केवल उछल कूद तक, विलासिता तक, खाने पीने तक, छप्पन भोग तक ही सीमित होकर रह गए। हमारे साहित्य में अगर भाव और ज्ञान का सम्मिश्रण, इमोशन और इंटेलेक्ट का सम्मिश्रण है, तो वो अर्धनारीश्वर रूप, और कोई देवता आपको नहीं मिलेगा जिसकी कल्पना अर्धनारीश्वर के रूप में की गई हो, आधा स्त्री आधा पुरुष, भगवान शंकर। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ वही है कि प्रेम की इंतहा में भी सात्विकता बनी रहती। आज बहुत सारा साहित्य मिलता है और बहुत सारे लोग हैं जो उस साहित्य के बड़े पुजारी हैं, उसकी किताबें भी बहुत बिकती हैं, उन्होंने भी प्रेम का प्रचार किया इस युग में, और जगह जगह पर वो ये बात कहते हैं कि प्रेम में आदमी बेवकूफ हो जाता है, प्रेम में आदमी पागलों जैसी बातें करता है। ऐसा एक जगह नहीं, रजनीश की दसों किताबों में आप पढ़ें। अगर प्रेम में आदमी पागल हो जाता है तो महात्मा बुद्ध की एक भी बात बतलाओ जो पागलों जैसी हो, वो प्रेम की चरम सीमा तक पहुंचे होते। गुरु नानक देव की एक भी बात बतला दो पूरे साहित्य में जो पागलों जैसी हो। श्री रामकृष्ण परमहंस देव की कोई एक भी बात ऐसी बतलाओ जो पागलों जैसी हो, और प्रेम की किस उच्च अवस्था में ये लोग थे ये उनके जीवन को पढ़ के देखो कबीरा। इसलिए इस तरह की बातें कहना और इस तरह की बातों पर विश्वास करना, उपनिषदों से तो करोड़ों मील दूर चले जाओगे, भक्ति से तो बहुत कहीं के कहीं और ही पहुंच जाओगे। प्रेम अपनी इंतहा में उस तत्व को दिखला देता है जो मन बुद्धि और वाणी से परे, जिसकी बात बार बार रोज करते, वो प्रेम के क्षणों में ही उस तत्व तक पहुंच सकते। और वो तत्व वो है जिसका सभी उपनिषदों में वर्णन किया गया, विवेक, वैराग्य, षट संपत्, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, महावाक्य, इन सब के सुनने का अभिप्राय ये होता है कि मन के अंदर वो सात्विक भाव जागृत हो गए जहां जीवन को समग्रता से देखा जा सकता है। जब जीवन को समग्रता से देखने की बात आ जाए तो उसे पराविद्या कहते हैं, जो कल जिस बात पर चर्चा हुई थी, पराविद्या उसी को ही कहते हैं, जिससे आपका प्रेम हो संसार में भी, मान लो थोड़ी देर के, उसके कौन से अंग को आप महत्व दोगे, उसकी उंगलियां खूबसूरत हैं या उसकी आंखें, उसके बाल खूबसूरत हैं या उसके पांव, वो समग्रता की बात है। समग्रता का मतलब है कि पूरे का पूरा ही सुंदर, उसका कहीं से भी नाम लो, कहीं से भी उसकी बात करो, जिस वो वही प्रेम आपके हृदय में जागृत होगा जो उसके किसी एक अंग को, किसी एक अंग के एक अंश का चिंतन करके जागृत होता है, वही उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के स्मरण से भी वही प्रेम जागृत। इसको समग्रता का दृष्टिकोण कहते, और अपराविद्या वो चीजों को बांट कर देखना, अलग अलग हिस्से करके देखना, जैसे कल विज्ञान का सहारा लेकर इस बात पर काफी चर्चा की थी। अपरा में उन्होंने वेद, उपवेद, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि 18 की 18 विद्याओं को गिनवाया कि ये सब अपरा। और परा में उन्होंने कहा अक्षरम दिगम्यत, बस एक ही शब्द के परा उसको कहते हैं जिससे अक्षर का ज्ञान होता। अधिगम का मतलब होता है अक्षर जहां ले जाते, तो परा और अपरा ऐसे करके उन्होंने दो विद्याओं की बात की थी। ये बात किसने की? अंगिरस ने, शौनक जी के पूछने पर। पूरी तरह से सत्य की अनुभूति के लिए अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को समाहित करते हुए, अर्थात भद्रम करणे विश्रुण्याम देवा का संकल्प करते हुए, उस विद्या को जिसको ब्रह्मा ने अथर्वा को, अथर्व ने अंगिर को, अंगिर ने सत्यवाहन को, सत्यवाहन ने अंगिरस को और अंगिरस ने शौनक को कहा। ये इसकी एक परंपरा है जिसकी हम बात कर रहे थे। अपरा विद्या भी अपने आप में कोई कम नहीं है, बहुत महत्व है उसके और परा का। अपरा की व्याख्या करें तो उसमें ही बहुत समय निकलता है। फिर भी अगर किसी का मन हो इन विद्याओं में जाने का, वो करने का, तो सूचना अर्थ सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि एक पुस्तक है छोटी सी, कभी लिखी थी मैंने वो, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ, ये उस पुस्तक का शीर्षक। उसमें अपरा विद्या का विस्तार से वर्णन किया गया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे पुस्तकें बेचनी है अपनी है वो, हम तो कभी कुछ छप जाए तो फ्री में भी बांटते ही फ्री में। लेकिन अगर किसी के पास समय हो इन बातों को पढ़ने का, आज किसी के पास फुर्सत ही नहीं कि अपने इस पुराने साहित्य को, इन बातों को, इनको पढ़े। आज तो कहानियां और ऊपर ऊपर की बातें, एकदम प्रेम में छलांग लगाओ ये जानने बिना कि प्रेम और वासना में क्या अंतर, मोह और प्रेम में क्या अंतर। जब तक इन शब्दों को ही हम नहीं ठीक तरह से जानेंगे तो हम उसी को, मोह को ही श्रद्धा भी लोग कहते, कितनी बड़ी श्रद्धा थी आपके प्रेम, बड़ा वो। तो ये वो शब्द हैं जिनका ऋषियों ने चिंतन किया, अनुभव किया, फिर उनके संबंध में कोई बात कही। हमेशा जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं इसको हमारे से पहले किसने किया, और जिसने भी किया वो किस श्रेणी के लोग थे, किस कोटि के लोग, किस चरित्र के लोग थे, किस स्वभाव के लोग, और उनकी तुलना में हम क्या हैं। ऐसा विचार करके ये विचार साधक को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि अगर मुझे वहां पहुंचना ही है तो ठीक है, मैं पूरा तो वैसा नहीं बन सकता, लेकिन कुछ अंश तो मेरे में उनके गुणों का आए जो उनमें।